أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. شروع کریں، چلیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دور قرآن 2025، ڈی کیو 2025. آج اس میں سے پارہ نمبر 23، 23، وما علی علی عبدو، یہ پارہ کریں گے. پہلا جملہ، پہلی آیت، پہلا پیغام، پہلا میسج ہوتا ہے نا، فرسٹ میسج جو بھی کسی پارے کے شروع میں ہوتا ہے، موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو وہی پورے پارے کا تھیم ہوتا ہے. اسی کے اندر انسان کو بہت کچھ دکھتا ہے. انشاءاللہ آج اس پارے کے تھیم پہ آنے سے پہلے بڑی محبت سے درود شریف پڑھیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں. آج اس شعور کے ساتھ پڑھیں کہ کوئی انٹرپشن نہ ہو، کوئی ہکپ نہ ہو، آپ کی توجہ نہ بھٹکے، میری سوچ نہ ادھر ادھر ہو، اور کسی بھی جگہ ہمارے اور اس قرآن کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر تھے، ہدایت کا ایک خوبصورت پیغام تھے، انسانیت کے لیے اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن تھے، اور پھر وہ کرنیں بڑھتے بڑھتے پوری دنیا پہ توحید کے اجالے کی صورت میں گئیں. آج کے پارے کے ناطے سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلص بننا سکھایا، دین کے لیے تڑپنا سکھایا، انسانوں کی تڑپ لگا دی، انسانوں کی محبت لگا دی. اور جو ہر وقت ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دین الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ نہیں ہم کہتے اہدینی، مجھے راستہ دکھا. سورت فاتحہ کا وہ پیغام کہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ جب کوئی ایک ہدایت کے راستے پہ چلے اور باقی ادھر نہ چل رہے ہوں تو بھی مشکل ہوتی ہے. تو آج کے اس بارے میں آپ کو یہ تڑپ دکھے گی. ہم اللہ کے نبی کو محبت سے محمد عربی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیا عرب میں پیدا ہوئے، یہاں سے اس بنجر زمین میں سے وہ روشنی پھوٹی، یہاں سے وہ بارش ہوئی، یہاں سے خیر کے وہ چشمے پھوٹے کہ جو پوری دنیا تک پھیل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی پڑھتے ہوئے ہم جہاں پہنچ چکے ہیں، وہ کیا تھا کہ آپ کی بات گھروں میں جانے لگی، پیغام میں تاثیر تھی، اور حق میں تاثیر ہوتی ہے، دل میں اترتا ہے. اللہ کے نبی کی دعوت پہ عام طور پہ شروع میں جوان بچے اور عورتیں سامنے آئیں، کیونکہ وہ ایموشنل ہوتے ہیں اور ان کے اندر حق بات کو سننے کے بعد پھر اسے پیچھے رہنا محال ہوتا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب عام ہوئی تو ظاہر ہے کہ جب کوئی بات عام ہوتی ہے نا تو یاد رکھیے ہر ایک آپ کو اچھا نہیں کہتا، کچھ لوگوں کے حقوق پہ زد پڑتی ہے. تو آپ آج ہم دیکھیں گے کہ دعوت عام کیسے ہوئی. اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا، گریجولی انکریز ہونے لگا. لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اپنے اسلام کا اعلان نہ کرتے. یہ بھی ایک حکمت کی بات لکھی ہے. بعض لوگ ابھی کچھ کیا دیا نہیں ہوتا اور ساتھ ہی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں پردہ کرنے لگی ہوں، مجھے مشرعی پردہ کروں گی. یہ یعنی کبھی کبھی تو وہ ایسی فیلنگ آنے لگتی ہے کہ مجھے روک لو. دیکھیے چاول پکتے ہوئے کھول دیں نا، بڑے لوگ کہتے تھے دم پہ چاول ہوں تو کھول دیں تو ہوا لگ جاتی ہے. روٹی کو اگر شروع میں ایک الٹ پلٹ شروع کر دینا تو سوکھ جاتی ہے. کبھی بھی اپنی کوئی نیکی کا اتنا نہ چرچا کر دیجئے کہ جو لوگ اس چیز کو نہیں پسند کر رہے، جو اس کو نہیں سمجھ رہے، وہ اس کی مخالفت شروع کر دیں. تو حکمت کا تقاضا کیا تھا کہ اس وقت اسلام کا کھلم کھلا اظہار نہ کیا جائے. ابھی آپ نے بھی کھل کر کام نہیں شروع کیا تھا، نظر بھی لگتی، حسد بھی ہوتا، شر بھی ہوتا. تو لہٰذا یہ ون آن ون بیس تھی. جیسے ہی جیسے نیا نیا کام کسی جگہ شروع ہوتا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، جو آ جاتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے اس کو کیا مل رہا ہے. لیکن جو لوگوں نے نہیں سنا ہوتا یا ان کو دعوت دی جائے تو ان کو یہ بالکل نہیں پتا ہوتا ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. हम क्या महरूम है। कई लोग अभी भी आप लोगों में से इस चीज की गवाही देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, तो मैं किसी से नहीं पता चला। क्यों? इसलिए कि पता नहीं होता क्या चीज। और कई दफा आप किसी को दावत देते भी होंगे, मुझे यकीन है, तो वो कहते नहीं थके होते, नहीं सुबह सुबह तो नहीं शाम होते ना, यानी एक हर जगह के उजर होते हैं। तो वन ऑन वन बेस्ड पे ऐसे वक्तों में दीन का पैगाम जो है वो देने की जरूरत होती है। अपने दीन पे अमल करते रहिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने किरदार की खूबसूरतियों के साथ लोगों को अपने अंदर का चेंज दिखाएं। तुम कहाँ जाती हो? घर वाले भी पूछ सकते हैं, दोस्तें पूछे तुम्हें कोई चेंज आ रहा है? तुम उस तरह बहस नहीं करती, अब तुम बड़ी क्वाइट हो गई हो, तुम्हारे अंदर एक हिल्म आ गया है। तो फिर कह अच्छा, मैं एक क्लास में जाती हूँ, चलना है आपको, मैं आपको ले जाऊंगी। ये तरीका रखे। शोहर भी कहने पे मजबूर हो जाए कि बेगम आपके अंदर कोई चेंज आ रही है। हाँ बस मैं ये करने लगी, मैं वो करने लगी, यानी बातें करने की बजाय अपने किरदार से लोगों को दिखाइए कि आपके अंदर कोई चेंज आ रही है। आपको ये हेल्दी चीज लेते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है। आप बेकारियां खानी पीनी शुरू कर दें, आप वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह जिस्मानी चीजें फूड की सूरत में या कोई और हमारे अंदर जाती है तो उसका असर दिखता है ना, इसी तरह कुरान और दीन का इल्म जो हमारे अंदर जाए तो गैर महसूस तरीके से इसका असर दिखता है और हमारे अंदर दिखना चाहिए। और अगर नहीं दिख रहा तो चेक कीजिए। लेकिन अब हुआ क्या कि ये जुमला लिखे जिन लोगों में वो ईमानदारी की बू पाते और कुछ हक की तलब महसूस करते, बस उनको ही वो दीन की दावत देते। ये जुमला आपके लिए बहुत अहम है। ढूंढिए, टटोलिए, तलाश कीजिए, तलाशे गुमशुदा। आपकी वो दोस्त हैं जो वाकई हक की तलाश करना चाह रही हैं, जिनके अंदर तलब है, आप उनको बुलाया करें। भरी महफिल में कहेंगे ना, एक अच्छी बात कहेगी, दूसरी उससे आगे जरा से, नहीं नहीं मेरे तो बच्चे छोटे हैं, दूसरी कहेगी हाँ मेरे भी छोटे हैं, तीसरी कहेगी उस समय मेरे ससुराल साथ रहते हैं मैं नहीं आ सकती, चौथी कहेगी हाँ, वो किलो काल में बात उड़ जाती है। तो बेस्ट थिंग है जब नई नई चीज हो तो वन ऑन वन बेस, आज मेरे साथ चलना, आज मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मस्जिद में जाना है, तरावी पढ़नी है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मैं लेके जाऊंगी, ये है वो है। हाँ ये लोग करते क्या, कुरैशी सरदारों की नजरों से जरा बच बचा कर रहते, क्योंकि वहां से मुखालफत का डर था। कुरान की तिलावत करनी होती, आयतें याद करानी होती तो बस्ती के बाहर निकल जाते। नमाज वैसे तो भी फर्जी नहीं थी, लेकिन छुप छुपा कर गारों में जाकर अल्लाह तला की इबादत करते, क्योंकि ये तो इंसान की अर्ज है ना कि अल्लाह तला के आगे वो झुके। तो बहरहाल इवन जब नमाजें फर्ज भी हो गई और इस तरह के हालात भी हुए तो तब भी कुछ लोग छुप छुपा के नमाजें पढ़ते थे। फिर इसी तरह जो नए आने वाले लोग थे ना, पहले वाले लोग उनको फिर नबी की बातें बताते, तो एक बड़ा खूबसूरत पैकेज जो कि सूरह तौबा में हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, वलऊ लनफर मिन कुल्ली फिरकतिन, ये कैफियत थी कि यानी थोड़े से लोग सीखें फिर उसको बाहर ले जाएं, फिर बाहर वाले लाएं, और इस तरह से हल्के हल्के दीन जो था वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता रहा। कभी कभी ऐसा होता कि कुफार को सुनगुन मिल जाती, ये क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, भेद जानने की कोशिश करते, वो मुसलमानों की टोह में हो जाते। और जब बातें मालूम हो जाती कि अच्छा मुसलमान तो छुप छुपा कर ये कुछ कर रहे हैं, अच्छा ये कोई नया दीन सिखा रहे हैं, बस मुखालफत हो जाती। और उनको अल्लाह के नबी की दावत का मेन इंग्रेडिएंट समझ आ गया था, तौहीद, शिर्क परस्ती से रोकना। बुतों की दुनिया में तौहीद की आवाज कितनी अजीब आवाज थी, आज कोई ऐसी जगह पे जाकर बात करे तो सोचिए क्या रिएक्शन होगा। आप अपने मुसलमान मुल्कों में किसी कब्र पे, किसी दरगाह पे, किसी मजार पे जाके लोगों से कहते बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं, तो फौरन चार लोग इनसिक्योर होंगे, ये कौन आ गए। कोई कहता क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब का भतीजा, यतीम, वो नबी होने का दावा कर रहा है, मजाक उड़ाते। क्या वो सबको दीन से फिर जाने पे उभार रहा है, अच्छा क्या वो हमारे देवताओं से बेवफाई पे उकसा रहा है, अच्छा पूरी कौम को अब साथ लगा रहा है, कौमी दीन से बगावत, यानी जो हमारा बाप दादा का दीन था, एंसेस्ट्रल रिलीजन था उससे, ओहो ये क्या हो रहा है, हमारे बाप दादा के तरीकों पे तनकीद हो रही है, क्या मोहम्मद की ये हिम्मत हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी लैंग्वेज में देखिए ये बातें हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, आज यही रिएक्शन तो हम नहीं बर्दाश्त करते, इसीलिए कितने गलत काम होते देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं कि लोग बातें ना करें हमें, ये ना वो। हर सू एक हलचल मच गई, हर तरफ एक हंगामा बपा कर जिससे देखिए गुस्से से बेताब था। किसी ने तो ये तक कह दिया कि नऊज़ बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन का असर है और कोई बात नहीं। किसी ने कहा इसको नमो नमूद की हवस है, ये मशहूर होना चाहता है, शोहरत चाहता है, फेमस होना चाहता है, ये तो एक नशा है जिसको जमाना खुद ब खुद उतार देगा, हमें इसको कुछ कहने की या इससे कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस बात को कोई इतनी अहमियत नहीं समझी, कहते थे ये चंद सर फिरे लोग हैं और इनके जहनों में एक बात आ गई है, देखना थोड़े दिन बाद इनका ये सारा जो अंदर एक जज्बा आया ना, एक जैसे हमारी जबान में कहते भूत सवार हो गए, हम तो नहीं कहते साहबा के लिए ऐसी बात, लेकिन वो कहते थे किताबों में लिखी हुई है ये बातें, इनके ऊपर जिन का असर है। और कोई कहता है कि हमारे माबूदों की मार पड़ गई है नऊज़ुबिल्लाह, जितने मुँह उतनी बातें। कोई कहता देखना 4 दिन की बात है खुद ही ठीक हो जाएंगे, और कोई कहता ये है कोई दीन, 4 दिन इसमें जाएंगे इसको जांचेंगे परखेंगे देखेंगे इसमें क्या होता है, देखना कुछ नहीं होगा निकल आएंगे। कुछ ने क्या कहा कि अच्छा हम भी जाके देखते हैं उनकी महफिलों में, देखेंगे अगर कोई काम की चीज मिल गई हमारा फायदा हुआ तो मान लेंगे, नुकसान होगा तो छोड़ देंगे। तो कुछ लोग जायजे लेने के लिए, कुछ सस्पेंस डालने के लिए, कोई तजस्सुस के लिए करते, और होता क्या कि जो एक दफा उस महफिल में साफ दिल के साथ आ जाता, परखने के लिए नहीं, गलतियां चुनने के लिए नहीं, उसके अंदर से फितने उछालने के लिए नहीं, जो एक दफा साफ कोरे कागज की तरह उस जगह की बातों को दिल पे लिखने लग जाता, वो कभी वापस ना आया। ऐसे भी सी वाकयात है जिसकी इस वक्त अब जरूरत नहीं है ना मौका है, लोगों को उसमें अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ दिखती। अबू तालिब के दिल में आया कि चले भतीजे से मिलें और देखें कि इसने कौन सा दीन निकाला। घर वालों को भी कभी होता है ऐसा तजस्सुस। एक दिन अबू तालिब इसी इरादे से घर से निकले, जाफर भी साथ रदी अल्लाह हो, क्या देखा कि एक घाटी में नबी सल्लम बैठे, घाटी होती है ना छोटी छोटी गारें पहाड़ियाँ, वह नमाज पढ़ रहे हैं, यानी अबू तालिब के साथ जाफर है और अली जो थे वो नबी सल्लम के साथ है, दोनों वादी से बहुत दूर बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। क्यों, दिल में सवाल है कि ये यहाँ के क्यों कर रहे हैं। भतीजे जी तुम कौन सा दीन ले रहे हो, अबू तालिब ने सवाल किया। आपने फरमाया चचा ये अल्लाह का दीन है, इसके फरिश्तों का दीन है, यही सारे नबियों और रसूलों का दीन है, दादा इब्राहिम का भी यही दीन है, और अल्लाह ने ये दीन देकर मुझे दुनिया की हिदायत के लिए भेजा। चचा जन आपका मुझ पर सबसे ज्यादा हक है, मेरी खैरख्वाही के आप सबसे ज्यादा हकदार हैं, आपके साथ मेरी सबसे बड़ी खैरख्वाही यही है कि आपको इस दीन की दावत दो। अल अक्रबु मिन अल अक्रब का असूल यहाँ आ रहा है, जहन में रखिएगा, आपको भी चाहिए कि मेरी इस ख्वाहिश को ठुकराए नहीं। अबू तालिब बोले भतीजे बाप दादा का दीन छोड़ना तो मेरे लिए नामुमकिन है। यहाँ से देखिए दिलों में कैसे खानदानी रस्म और रिवाज की चीज़ें बैठी होती हैं। तो कहने लगा ये तो मैं नहीं कर सकता, हाँ मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी और जब तक मेरी जान में जान है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा बेटे इस दीन में तो आ गए लेकिन इसे समझते भी हो, यानी ऐसी बातों ही में तो नहीं आ गए, समझ के आए हो। तो हजरत अली बोले जी हाँ अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ और जो कुछ ये कहते हैं इसको मानता हूँ और अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत भी करता हूँ। अबू तालिब ने कहा कि ठीक है बेटे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भली बातें ही बताते हैं, वो जैसा कहे वैसा ही करो। यहाँ से क्या समझ आया, अबू तालिब खुद तो मुसलमान ना हुए मगर बेटों के लिए इस्लाम को पसंद किया, क्या इसमें कोई राज था। कुरैश के साथ इनका क्या अंदाज रहा, प्यारे नबी के साथ क्या बर्ताव रहा, ये सारी बातें आने वाला वक्त बताएगा, फिर आपको हिकमत समझ आएगी अल्लाह के फैसलों की। कई लोग आज आपके इर्द गिर्द भी ऐसे ही होंगे, खुद नहीं वो नेकी करते लेकिन आपको नेकी करता देकर तारीफें बड़ी करेंगे, खुश बड़े होंगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा काम करें करते रहिए, अच्छा हमारे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक दे और वो करे। तो लिहाजा इनकी ये सारी बातें कुछ ऐसी थी, और इसमें एक बहुत बड़ी बात है और वो क्या कि इनके दिल में तासुब नहीं था, तकबुर नहीं था, सिर्फ एक इनका मसला रहा पूरी जिंदगी, लोग क्या कहेंगे। लिखिए इस दौरे कुरान के बाद तो आप इसको एक सफ़े पे लिख कर ना 10 दफ़ा फाड़ दिया करें, डेली ये एक्टिविटी करें, आप सबको इससे अक्सर फायदा होगा, मुजर्रब नुस्खा है, जो जितना लोगों से डरता है वो उतनी डोज बढ़ा ले, कोई 10 दफ़ा नहीं तो 12 दफ़ा लिख ले, 20 दफ़ा लिख ले, 10 दफा लिख ले, लिखे कि लोग क्या कहेंगे इस जुमले को, लिखे बस, और फिर फाड़े बस। ये फाड़ना आपके दिल दिमाग में बता देगा कि लोग तैंड पे यही कहेंगे, हाय अच्छी थी बेचारी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अब दावत आम जब होनी थी, उससे पहले ही मुसलमान जहां भी नमाज पढ़ते, इबादत करते, कुरैश मजाक उड़ाते, रुकू करते तो कह कहे लगाते, सजदा करते तो जुमले कसते, रोज बरोज ये चीज बढ़ती गई। जो हर माशरे में थोड़े से उबाश टाइप के लड़के होते हैं ना, उनके लिए तो एक हंसी और दिल लगी बन गई। मुसलमान मक्का की घाटियों में जब इबादत कर रहे होते, ये वहां पहुंचते, कभी आंखों से इशारे करते, कभी आंखें मारते, कभी कह कह लगाते। एक दिन मुसलमानों को तरह से गुस्सा आया, जोश आया, बेकाबू हुए, दोनों तरफ से बाजू तान लिए, यानी वो कहते हैं ना कि आस्तीनें चढ़ गईं, लड़ाई होगी, क्या कुछ हुआ, खून के फवारे जारी होने लगे। ये पहला खून था जो अरब में इस्लाम के लिए बहा, लेकिन बहरहाल ये छोटी छोटी झड़पें होती रही। ये जुमले दिल पे लिख लीजिए, जितना हो सकता प्यारे नबी मुशरिकों से दूर रहते, ताकि मुसलमान इनकी शरारतों से महफूज रहे। कुरान सुनाना होता, कोई नई वही होती, तो सबको दारुल अरकम में ले चलते। ये क्या था, इस्लाम के नाम पे बना हुआ पहला मदरसा, सहाबी रसूल अरकम का घर, रदी अल्लाह हो दार अरकम, आज भी उसके नाम की एक निशानी मौजूद है। अगर आप सफा मरवा और उस तरफ से आए ना, तो ये जगह मौजूद है। कई लोग होते हैं जो नई दावत के लिए ढारस बन जाते हैं, तो दारुल अरकम को ये शान आज क्यों मिली, क्योंकि सहाबी ने ये नेकी उस वक्त की जब कोई नहीं कर रहा था, उनके दिल में वो ख्याल आ गया जो किसी के नहीं आया। आज कई लोगों के पास कितनी नेमतें होती हैं, घर भी होते हैं, पैसा भी होता है, क्या करें समझ नहीं आ रहा, किधर करें, किसको दे, क्या करें, लेकिन उसको जाया करते थे। किसी की औलाद नहीं होती, ऐसे एक दो केसेस मेरे सामने भी आए ना, समझ नहीं आती क्या करेंगे, इतना पैसा है, आज हमारी आंखें बंद हो गई तो क्या होगा। तो मैं देखती हूँ इनकी नजर ठीक है, आईसा ठीक है इनकी। मैंने कहा अल्लाह के रसूल में बहुत देते हैं, यानी लोग बहुत देते को पता क्यों समझते हैं, ज़कात भी देते हैं, फकीरों को भी देते हैं, गरीब रिश्तेदारों को भी देते, पर है ही बहुत। एक औरत ने तो मेरे कान के पास कहा, क्या बताऊं कितनी जायदाद है हमारे पास। मैंने कहा जब आप जाएंगे, अल्लाह आपको आफियत में रखे, तो शरई बांट हो जाएगी। अच्छा पता था कि अपने बच्चे ना हो तो फिर भाई बहनों तक जाती है, ये हौसला नहीं था कि जिनके साथ दुनिया में नहीं जिंदगी भी नहीं बनी, उनको फिक्र लगी हुई है कि मेरे साथ बाद में क्या होगा, लेकिन उनके दिल में शैतान ये नहीं डालता कि आप अपनी जिंदगी में इसको अल्लाह को दें। सदका जारिया के कामों में लगाइए, आप इधर खैर का काम करिए, इधर करिए, तो जब कुरान पढ़ते हैं फिर बड़ी समझ आती है। फिर तो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी खपा कर भी कहता है कि अल्लाह ताला हक है कि हक अदा नहीं हुआ। बहरहाल 3 साल हो गए इस पैगाम को शुरू हुए, अब हर एक जान गया कि आप एक नए दीन की दावत देते हैं, सबको मालूम हो गया कि आप जोर पकड़ते जा रहे हैं, आप मशहूर होते जा रहे हैं, आप फेमस होते जा रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो मर्जी आज की लैंग्वेज में कह ले, और साथ ही बढ़ते जा रहे हैं। अब जब एक कुव्वत बन गई, तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, फस दबीमा तो मर वार अनिल मुशरिकीन, सूरह हिजर की आयत 94 है। आप खुल्लम खुल्ला दावत दें, आपको जो हुक्म मिले कि ये जाएं और मुशरिकों के चक्कर में ना पड़े, यानी आज तक जो काम छुप कर कर रहे थे ना, उसको ऐलानिया कीजिए। और इस तरह फिर मोहम्मद अरबी ने किस तरीके से इस पहली पुकार पे लब्बई कहते हुए, जो इकरा बिस्मे रब्बी का से शुरू हुई थी, किस तरीके से लोगों को दावत दी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो सेशंस आएंगे, हम उसमें सुनेंगे, वानजिर अशीरतक अलअक्रबीन वाहफिज जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराइए, और ईमान लाने वालों से जो आपकी पैरवी इख्तियार करे, अपने शाने झुका दें, यानी जो न्यू कमर है उनको तवाज़ो से मिले, मोहब्बत से मिले, स्माइल से मिले, लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करे तो इनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो इससे मैं बरी हूँ, और इस जबरदस्त और मेहरबान पे भरोसा करो जो तुम्हें देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत को भी देख रहा होता है, बेशक वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल से इनफरादी दावत दे रहे थे, फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि अब डरने की जरूरत नहीं, खुल्लम खुल्ला दावत दीजिए, तो फिर दावत आम शुरू हुई। ना डर हो कर रब का पैगाम सुनाएं। और ये काम सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों भाई बंदों से शुरू करें, और अगर कुछ नादान ना माने तो ज़रा भी परवाह ना करें। ये हुक्म पाकर आपने बाहर निकलना छोड़ दिया, हर वक्त घर में रहते और सोचा करते कि क्या करूं, किस तरह अपने अहले खानदान को समझाऊं। आपको भी फिक्र होनी चाहिए। हम जिनके साथ खाते पीते, ईद की पार्टियां करते, इफ्तारियां सहरियां खाते, हमें उनकी फिक्र दूसरों से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो आपके अंदर ना रिश्तेदारों की मोहब्बत और उनकी फिक्र इकट्ठी होने लगी। हर तरफ इसका चर्चा हो गया। आपकी फूफियों ने सुना तो वो बहुत डरी घबराई कि कहीं मोहम्मद हमारा भतीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार तो नहीं हो गया, या कोई परेशानी तो नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं जिसमें ये घिर गए हैं। वो आपके पास आई, समझाने लगी, प्यारे बेटे मोहम्मद, कहो क्या हाल है, तुमने घर से निकलना क्यों छोड़ दिया। अच्छा, ये भी एक बात होती है, चुप लग जाती है बंदे को। जब अंदर हक की मार्फत आती है ना तो बोलने को दिल नहीं करता। महफिलों में बंदा बैठा भी हो ना, लेकिन ध्यान उधर कोई नहीं होता, लोग कहते खोई खोई रहती हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया। तो खैर, वो फूफियाँ अपने प्यार वाले अंदाज में समझाती है, और अगर आप फूफी हैं तो आप पता है भतीजे भतीजियों से कितना प्यार होता है। क्या बात है, हमें बताओ। फिर आप कहते क्या बताऊँ फूफी जान, मुझ पर एक बहुत बड़ा बोझ है और मैं इससे दबा जा रहा हूँ। देखिए ना फूफी जान, एक तरफ तो ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये बुतों को पूजते हैं, जबकि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राजी करें, यानी मैं हर वक्त उलझा रहता हूँ। और याद रखिए, हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था जब बुत तोड़ने का वक्त था, कौम ने कहा चलो सब चलते हैं, तो कहने के इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। उलमा कहते हैं कि ये हजरत इब्राहिम का झूठ नहीं था, एक तौहीद परस्त शिर्क वाले माहौल में जाकर खुद को सिख फील करता है, और ये अपने लिए एक मियार लिखी आज से। अगर आप किसी नॉन मुस्लिम दोस्त के साथ खाती हैं पीती हैं हंसती हैं बोलती हैं ये वो करती हैं और आपको कोई रिजेंटमेंट नहीं होती, तो तौहीद कमजोर है। ये हो नहीं सकता किसी को उसके गलत तरीके पे इबादत करता देखकर, या उसके रंग रूप को देखकर, या उसके घर बुत और ये चीजें देखकर आप खा पी के और उसके गुलगुले और उसकी चाट और खाने खा के खुश आ जाएं। इम्पॉसिबल है, आपके लिए खतरे की अलामत है। आपके दिल में अभी तौहीद पूरी नहीं, और उससे भी मोहब्बत कोई नहीं है आपको। जिससे मोहब्बत होती है उसके आगे तो बंदा बिछ जाता है, रो पड़ता है। तो लिहाजा इस तरह की बातें आपने अपनी फूफो से की, मैं क्या करूं इनका, मैं कैसे इनको समझाऊं, ये तो तबाही के चक्कर में पड़ गए हैं, मैं कैसे होशियार करूं, मुझे आप समझाएं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। दिल में आता है सबको खाने पर बुलाऊं, फिर इनको अल्लाह की नाफरमानी से डराऊं, तो फूफो थी कहने की क्या हरज है, कर दो दावत, लेकिन देखो चचा अबू लहब को मत बुलाना, वो मरते दम तक तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा। अल्लाह हु, कुछ किरदार अपनी हरकतों से दिखा रहे होते हैं, सारी दुनिया को बात समझ आ जाएगी उसको नहीं आनी, पक्की बात है। कुरान तो उसको मोहर कहता है ना, लेकिन हकीकत में कई और उसके वजूहात भी होती हैं। बहरहाल, आपने खाने का इंतजाम किया, दावत दी, अबू लहब को भी बुलाया, ये भी नोट कीजिए। आप पर मैं नहीं कह सकते कि कोई मानेगा नहीं मानेगा, फूफिया ने मना किया, आप खुद भी जानते थे वो आपका सख्त दुश्मन है, आपकी हर हर बात से जलता है, मुखालफत के लिए हर घड़ी तैयार रहता है, लेकिन आपने फिर भी बुलाया। दावत में बहुत से लोग आए, सब खाने पीने में शरीक हुए, इसमें आपके चचा भी थे और चचाजाद भाई भी थे, कुछ रिश्तेदार थे। आप वहीं बैठ गए कि लोग खा पी लें, अब फिर मैं अपनी बात करूं, लोगों को दीन की दावत दूं। अब ये वक्त जो है अबू लहब के लिए कहना चाहिए एक स्टेज तैयार हो गया। उसने कहा तो बड़ा अच्छा मौका, लाओ आज मोहम्मद को घेरते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने जो बाप दादा का दीन छोड़ा है और एक नया दीन घड़ लिया है, इसको जरा कुछ डराते हैं धमकाते हैं। इत्तफाक से अजीजों में सारे लोग मौजूद थे, और वो खुश था कि आज सबके सामने बात खूब बनेगी। जहर उसको तो ये पता था ना कि हम सारे एक हैं और मोहम्मद अलग हो गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, ये कुछ सोचा खड़ा हो गया और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे चचा हैं, तुम्हारे चचाजाद भाई हैं, देखो तुम वही राग अलापो जो इनको भला लगे, यानी वो बात करो जो इनको अच्छी लगती है, तुम वो बातें क्यों करने लग रहे हो जो इनको अच्छी नहीं लगती। आज हमें भी लोग डराते हैं, आपके रंग में भंग डाल रहे हैं, आपके बुरे बनते हैं। कहने लगा नाउज़ुबिल्लाह कि ये जो कुछ दिन से तुम्हारा सर फिर गया है, ऐसी बातें, यानी देखिए कुरान ने जिसके लिए आयतें उतार दी कि उसने नबी को गाली दी, अब सीरत की किताबें तो पढ़ के देखिए, अरबी किताबें भरी पड़ी हैं इसकी बद कलामियों से, लेकिन हम तो बस यही कह सकते हैं कि उसने नबी की तौहीन की। कहने लगा बाप दादा का दीन गलत है क्या? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें सब कुछ पता है। देखो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती। तुमने तो अपने भाइयों पर ऐसी मुसीबत ला के खड़ी कर दी है कि खुदा की पनाह। और ये भी याद रखो, सारे अरब के मुकाबले में तुम्हारी कौम कुछ भी नहीं। अब अगर तुम अपनी हरकतें नहीं छोड़ते तो भाइयों को हक होगा कि पकड़ के तुम्हें कैद कर दें। थ्रेट, धमकियां, ये इनको गवारा है। पर ये बात गवारा नहीं कि कुरैश तुम पर पल पड़े और फिर सारा अरब भी उन्हीं का साथ देगा। अब वो तो अपनी बातें कर चुका। अल्लाह के नबी ने बहुत चाहा कि कुछ बोलें, लोगों को रब का पैगाम सुनाएं और इनको अल्लाह की नाफरमानी से डराएं, बताएं कि इसमें क्या बातें हैं और किन बुराइयों की निशानदेही होती। लेकिन अबू लहाब ने घर आकर भी आपको बात करने का मौका ना दिया। लोगों को भड़काता रहा, बोला ये तो ये है वो है, तुम लोग अभी इसका हाथ पकड़ लो, इसको रोको, इंतजार क्यों कर रहे हो, फिर बाद में बाहर वाले इसको पकड़ेंगे, फिर तुम्हें शर्मिंदगी होगी। क्योंकि वो खानदान परस्ती बहुत थी ना, कहते थे अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने बाहर से पकड़ा तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम खुद ही इसको रोक लो, और अगर तुम उनके हवाले इनको कर दोगे तो तुम जलील होगे, हमेशा के लिए बदनाम हो जाओगे, और अगर हिमायत करोगे तो दुनिया तुम्हें बुरा कहेगी, लोग क्या कहेंगे, तुम मारे जाओगे। खैर, उसकी इस तरह की बातें सुन के आपकी फूफी सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थी, बेताब हो गई, बोली मेरे भाई तुझे शर्म नहीं आती कि भतीजे की मुखालफत कर रहे हो? खुदा की कसम, जानने वाले तो एक जमाने से कहते आ रहे हैं कि आले मुतल्लब में एक नबी होगा, सुन ले वो नबी यही है। अबू लहब ने जोर का कहका लगाया, तुम्हारा क्या हाथों में चूड़ियां पहन ली और घर में बैठ रही, और अगर कुरैश दुश्मन हो गए और हमसे जंग की ठान ली, फिर दूसरे कबीलों ने भी उनका साथ दिया तो फिर क्या होगा? यानी डांटा गया कि तुम तो बातें कर रही हो ना, एक औरत हो ना, तो अगर बाहर लड़ाई लग गई तो लड़नी तो हमने ही है ना जाके बाहर, वो तो हमें चुनटियों की तरह मसल देंगे। अबू तालिब बोले अब तो जान में जान है, हम इसका साथ देंगे। अबू लहब कहेंगे भाई हो चलो यहाँ से, चलो अब यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं। मजे की बात देखिए अल्लाह ताला की तरतीब। आज के पारे में अभी इंशाल्लाह जब सूरह स्वाद शुरू करूंगी ना पारे के दौरान, तो ये वाक्य वहां आएगा। चलो चलो उठो निकलो यहाँ से, यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं, यहाँ तो कोई और ही बातें घड़ी हुई हैं। ये दावत एक मकसद के तहत, एक ऐसे ही एक एजेंडा था पीछे, दावत खा दावत खाना खिला रहे हैं, नाम दीन का, अंदर कोई और ही बातें हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और सब उठ कर चले गए, अना थी उनमें, तासुब था, बड़ापन था। अब लोग तो तमाशा देख रहे होते हैं ना, दो लोग काम कर रहे होते हैं, बात कर रहे थे, बाकी देख रहे थे, और अल्लाह के नबी दिल ही दिल में अपनी बात रख के रह गए और आप वहाँ कुछ ना बोले। फिर कुछ अरसे के बाद आपने दोबारा एक दावत का इंतज़ाम किया, खानदान को बुलाया, और जब लोग आए तो फिर मैं उनको क्या कहूँ, इंशाल्लाह इसको अगली नशिस्त में देखेंगे। क्या आपको यहाँ खानदान दिख रहे हैं? आम हमारे जैसे लोग थे ना, इस दीन के रास्ते में ये कभी नहीं हो सकता कि आप ये कह दें कि आपकी बात मानी जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, तो ये नबी का अखलाक था।